نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا تحزن إن الله معنا. غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ڈونٹ بی سیڈ یا لا تحزن، غم نہ کیجئے. اس سیریز میں آج ہم ڈے 12 کا آغاز کریں گے. کیسے جلدی سے 12 دن گزرنے والے ہو گئے، اور الحمدللہ ان 12 دنوں کے بیٹھنے، سننے، سنانے نے اکثر لوگوں کے تو زندگی بھر کے غم دور کر دیے، ماشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بلی کے بچے کی طرح غم پالتے ہیں، اور انہی دکھوں اور غموں میں جو چیزیں ہمارے پاس اچھی تھیں ان کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان اتنا حسین ہے اور اتنا حکمتوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی روشنی میں اپنے غموں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں خوشیوں میں ڈھلے ہوئے دکھتے ہیں. آج اس دن میں ہم جس آیت کو ساتھ لیں گے، ہر دن کی طرح ایک آیت قرآن پاک میں سے جس میں حزن کا ذکر ہے، یا تو غم سے بچنے کا حکم ہے، یا اللہ کے نبی کے غموں کا ذکر کر کے امت کو بتایا گیا کہ جب کبھی تمہیں غم لگے، تم دکھی محسوس کرو، تم ڈپریس ہونے لگو، اور خدا نخواستہ کسی کا اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کا ارادہ بنے، تو اللہ کے کلام سے یہ بات سن لے. کیا؟ آج کی بات ہے سورۃ الانعام 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ آج کی ہماری ٹپ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کی فکر کیجیے. صلح ہے تو صلح ہے، اسی سے لفظ مصلح ہے، صالحہ ہے. لیکن اس وقت جس چیز کو آپ اور میں دیکھیں وہ اصلاح ہے. حقیقت ہے کہ انسان کے اندر بعض اوقات کچھ ایسی نگیٹو تھنگس ہو جاتی ہیں کہ جب تک آپ ان کی اصلاح نہ کریں، بڑے سے بڑی خوشی بھی آپ کو خوشی نہیں دے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا غم بھی آپ کو دکھی کرے گا. تو آج ہم نے اپنی ان عادات کو ڈھونڈنا ہے، ان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جو ہمیں عموماً خوش رہنے سے دور رکھتی ہیں. بس آپ دیکھیے، نگیٹیوٹی اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے. آپ ایک ہی گلاس دو لوگوں کو دکھائیے جس میں آدھا پانی ہے اور آدھا نہیں ہے. کچھ کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے. فرق کس کا ہے؟ پہلا پازیٹیو ہے، ہیف پہ غور کرتا ہے، اور دوسرا جو نہیں ہے اس پہ غور کرتا ہے. تو اس عادت کو اگر انسان اپنے آپ کو بدلنے میں لگا دے، اور اس عادت کو چینج کیجیے، تو یہ اصلاح آپ کو انشاءاللہ بہت ساری تکلیفوں سے دور کر دے گی. پھر پچھلے سیشن میں ہم نے جو چیزیں لی تھیں، اگر اس کی لسٹ کو دہرا لیں تو محاسبے کے طور پر بھی اچھا لگے گا کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ بھی سیکھا ہے، ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مجھ سے یا میرے ارد گرد والوں سے نہ ہو. کبھی کبھی آپ کے اندر کوئی نگیٹو عادت نہیں ہوتی، مانتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ رہنے والوں میں ہوتی ہے. اب وہ ایک دکھی بندہ سارے گھر کو دکھی کر دیتا ہے. ایک نگیٹو سوچ والا انسان بعض وقت پورے گھرانے اور خاندان میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. آپ نے ضرور ایسے تجربے کیے ہوں گے کہ فلاں خاتون کے آئیں، گھر کو توڑ گئیں، اور سارے ہی ناراض ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، اور اسی طرح سے سوان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں سے اپنے لیے یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد والوں کی اصلاح بھی کیسے کریں. اور اسی طرح سے جو چیزیں ہم نے دیکھی پچھلے سیشن میں، اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ کتنی ہی مصیبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنج نہ کریں. تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو. اب یہ جملے آپ اپنے شعور پہ ڈالیں. آپ ہر جملے کے اندر اپنے آپ کو فیل کریں، یہ کوئی دوست، کوئی مسلح، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا مجھے کہہ رہا ہے. اور جب اللہ نہ کرے کوئی دکھ آئے نا، اس وقت تو اکثر لوگ سننے کے موڈ میں نہیں رہتے. آپ کا میرا اس وقت یہ سننا اور سنانا کسی ایسے وقت میں ضرور کام آئے گا کہ جب کوئی ایسی ناگوار صورت آئے گی، جو آئے گی، جو مرضی کہہ لیجیے، پھر بھی آئے گی، کیونکہ زندگی میں دکھ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں. तो उस वक्त ये बातें आपको याद रहेंगी। मसलन, दुनिया तो ऐसे ही लोगों से भरी है, मतलब लोग तो बातें करेंगे, दुख भी आएंगे। नेक लोग आज भी हैं, कोई नापैद तो नहीं हो गए। और खामोशी अच्छी गजा, यानी आपके मेरे बोलने से भी गम और खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बलाओं से ना घबराइए कि ये इनाम और अतिया भी हो सकती हैं। क्या सिनेरियो नहीं चेंज होता? आजकल वबा के दिन हैं अगर, तो क्या रात जाते का खौफ नहीं है? आप ढूंढिए कि इस वबा में भी क्या खैर है। कितने लोग 5 वक्त के नमाजी हो गए होंगे, कितने लोगों ने गुनाहों से तौबा कर ली होगी कि पता नहीं किसी वक्त हमारे भी न जाने का वक्त आए। तो फिर उनके लिए तो ये गाइडेंस इज गिफ्ट जैसे कैंसर का तोहफा। कैंसर इज अ गिफ्ट उस शख्स के लिए जिसने इस खबर को सुनकर अपनी इसलाह शुरू कर दी। फिर इसी तरह इंसान आलम असगर है, यानी हमारे अंदर एक छोटी सी दुनिया बरपा। कितनी ही मुसीबतें फ़ायदा मंद होती हैं, ईमान से शिफा मिलती है। अल्लाह ताला मजबूर मुशरिक की भी सुनता है, तौहीद परस्तों की क्यों ना सुनेगा। यानी लाड होता है ना, अच्छा सब को आप देते हैं मुझे नहीं देंगे, सब को आप वक्त देते हैं मुझे नहीं देंगे, सबकी सुनते हैं मेरी नहीं सुनेंगे। कभी ये लाड वाले जुमले आपने बोले और सुने तो होंगे ना। बस उसको ले आइए, एक दफ़ा अपने रब के साथ मोहब्बत करना आ जाए, अदब अदाब में रहते हुए लाड भी बड़े चलते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लाड आपको कई अहादीस में मिलते हैं, अल्लाह ताला के साथ जो होते थे उनके। इसी तरह से ज़िंदगी तसव्वुर से भी ज़्यादा छोटी है, इसलिए गम ना कीजिए। इस जुमले ने तो यकीन कीजिए कि एक पॉज दिलवा दिया दिमाग में। जब कभी कोई गम आए ये जुमला सोच लें। फिर इस तरह बकदरे किफाफ हासिल है तो रोने धोने की क्या ज़रूरत। पूछिए शाम के लिए खाने की चीज़ है, कल के पहनने का कोई जोड़ा है, और इसी तरह से एक दो चीज़ें और पूछिए तो फिर आपके आंसू तो यहीं रुक जाएंगे। जो हुआ इस पर रजामंदी से हुजन ख़त्म हो जाता है। आपने नोट किया कम अज़ कम 10 से ज़ायद टिप्स, जो हमने माशाल्लाह 110 टिप्स लिए ना अभी तक कमोबेश, ये तकदीर पे राज़ी रहने से मतलब थी। तुम्हारे गमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की तकदीर को ना मानने पे। तब चलेंगे हम अगली टिप पे। एक उज़्व खो जाने का क्या गम, दूसरे आज़ाद तो सलामत हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें दो हाथ, दो बाजू, दो पांव दिए कि चलो एक चली भी गई तो क्या हुआ। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का शेर है, अगर अल्लाह मेरी आंखों से नूर ले ले तो मेरी ज़ुबान और आंखों में तो रोशनी है, मेरा दिल ज़की है, अक़ल में कजी नहीं, मेरे मुंह में तलवार की तरह चलती ज़ुबान है, जो तकलीफ़ लाहक होती है इसमें खैर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आसान तक रहो शेयन बहू खैरकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए खैर का ज़रिया हो। 216 अलबकरा। तो क्या पता चला, जब एक चीज़ ना हो तो दूसरी को देख लें जो है। इसी तरह बिशार बिन बर्त ने कहा, दुश्मन मुझे आर दिलाते हैं। आर का मुराद है कि शर्म दिलाते हैं या गुस्सा दिलाते हैं या ताने देते हैं। हालांकि ऐब तो इन्हीं के अंदर है, अंधा कहा जाना कोई ऐब की बात नहीं। जब आदमी मर्दानगी और तकवा रखे तो आंखों का अंधापन क्या नुकसान देगा। अंधेपन में अजर है, ज़खीरा है और इस्मत है, और मैं इन तीन चीज़ों का ही मुख्ताज हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे ज़्यादा बंदा क्या खुश रहे अल्लाह के फैसलों पे। तो जितना ज़्यादा आप अपने नसीब पे राज़ी होंगे ना, लोग भी फिर नहीं कहते आपको कुछ, लोग कहते हैं इन्होंने तो लड़ना ही नहीं। देखिए जो लड़ता नहीं ना उसको थक जाते हैं लोग कोशिशें कर करके कि बोले, गुस्सा दिलाएं। कहता करते रहो मुझे तो कुछ नहीं होगा। अमूमन लोग घर में उस बच्चे को चिढ़ाते हैं जो चिढ़ता है, और जो पहली बार सुन के कहते हैं सो के मुझे क्या, मैं तो अपने काम में हूँ, तो फिर ऐसे ऐसे लोग उसको छेड़ना छोड़ देते हैं। इब्ने अब्बास और बिशार बिन भर्त की बातों में फ़र्क है। इसी तरह सालेह बिन अब्दुल कुद्दूस, जब अंधा हो गया तो उसने कहा, दुनिया को सलाम हो कि बूढ़े और अंधे के लिए दुनिया में क्या रखा है। आदमी जीते जी मर जाता है, छुटी उम्मीदें ऐसे छुटलाती रहती हैं। जैसे तबीब कहता है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, बास बास से करीब हैं, कसा यानी तकदीर ला मुहाला नाफिज होती है, यानी माने ना माने हो के रहेगा, ये कबूल करो या इनकार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो कज़ा पर राज़ी हो जाता है इसे सवाब मिलेगा, जो इनकार करता है वो गुनाहगार होता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मैमून बिन मेहरान को लिखा कि तुमने अब्दुल मलक पर मेरी ताज़ियत की है, मुझे इस मामले का बराबर इंतज़ार रहा, जब ऐसा हो गया तो मैंने इसका इनकार नहीं किया। अल्लाह अकबर। देखिए इंसान बड़ा ऐसे नहीं बनता, उसके बड़ा बनने के पीछे कुछ बड़ाइयाँ होती हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके नाम लेकर दिल खुशी से भर जाता है। तो फिर क्या सीखा कि जो नहीं उसको छोड़िए, जो है उसको एंजॉय करें। और ये जो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उनकी बात आई थी ना, बहुत कम लोगों को पता जिंदगी की आखिरी घड़ियों में ये नाबीना हो गए थे, जिनको अल्लाह के नबी ने तर्जमानुल कुरान कहा, जिनके साथ कुरान की तफसीर जुड़ी हुई है। अल्लाह ने दुनिया में उनकी आंखों का जब नूर ले लिया तो वो उस पर भी खुश थे। ऐसी बसारत मांगी है दिल की, ऐसी जिंदगी बन जाए कि गम खुशियों में बदल जाए। मुझे भी ये बात नहीं पता, एक ख्वाब याद आ जाता है इब्ने अब्बास का नाम सुनते ही, और उस ख्वाब में जो चीज़ देखी उसके बाद इनके बारे में रिसर्च की और जब मालूम हुआ तो मैं हैरान रह गई। कितनी बड़ी हस्ती और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को ले लिया। तो आप और मैं ये नहीं कह सकते कि अच्छा कोई गुनाहगार है तभी तो फिर उसकी नेमतें चली गईं, वो बीमार है कुछ ना कुछ तो किया होगा। हमेशा अपनी फिक्र कीजिए, चंद हकायक लीजिए जिस्म के बारे में, क्योंकि एक उस खो जाए तो दूसरे का क्या गम। हमारे जिस्म में 206 के करीब हड्डियाँ हैं, 206, 78 अहम अज़ा हैं, यानी बेसिक ऑर्गन्स के जिनके बगैर आपका निज़ाम ख़राब हो जाता है, और 12 12 मेजर से मेजर किस्म के सिस्टम्स हैं, मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वगैरह, और 60,000 माइल लंबी खून की नालियाँ हैं, यानी हमारे ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और इसी तरह से दूसरी चीज़ें, इसको अगर आप स्ट्रेट सीधा सीधा खोलते रहें ना तो 60,000 माइल्स की इनकी लेंथ है। कितने को जिस्म में अल्लाह ने डाल दी, 5 से 6 फुट में। कोई इनकार कर सकता है अल्लाह के वजूद का? तो जिस रब ने एक एक नाली को उसकी जगह पे लगा दिया, एक एक सेल को डाल दिया, अगर आपकी मेरे बारे में वो कोई फैसला करे तो वो गलत होगा? नहीं होगा। इसी तरह इंसानी आंख 2.4 मिलियन लाइट ईयर तक देख सकती है, यानी अगर आगे से रुकावटें हटाते जाए ना तो आपकी आंख का जो कॉर्निया है, जो उसके लेंजेज हैं, वो इतनी दूर तक और इतना देर तक देखते हैं। कितने साल तक हम जीते हैं, अपनी अपनी उम्र लिखे, उसको फिर महीनों और सालों और दिनों में कन्वर्ट कीजिए, इतने दिनों से आपकी आंखें काम कर रही हैं। दुनिया का कोई कैमरा इतना अरसा काम नहीं कर सकता। तो फिर माजूरी क्या है, सवाल लिखिए। जिस्म के एक या एक से ज़ायद अज़ा का ना होना या सही काम ना करना, आप तो इसी को माजूरी कहते हैं ना, हैंडीकैप। लेकिन असल जिस्मानी माजूरी के साथ साथ ज़हनी माजूरी भी होती है। वो क्या होती है? सारी नेमतें, सारी सलाहियतें उसको काम में नहीं ला रहे, उजर ही उजर है, बहाने ही बड़े हैं, टाइम ही नहीं। सबसे बड़ी तो जो नाशुक्री हम करते हैं वो वक्त की नेमत की करते हैं, वक्त ही नहीं है। क्यों भाई, आप को प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, सारे मसले आपसे पूछ के हल हो रहे हैं। खाम खा के लुक बिजी डू नथिंग वाली कैफियत है हमारी, और वक्त हमें फिर नहीं मिलता। इसी तरह हमने इसमें कुछ मारूफ अकवाल देखे, जिसमें इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का भी था कि अगर आंखों का नूर चला भी गया तो जुबान और कानों में नूर तो है ना, दिल तो धड़क रहा है, अक्ल टेढ़ी तो नहीं है, मुंह में जुबान भी है। यहाँ आप सोचिए, अल्लाहुम्मा अजअल फी कल्बी नूरा व बसरी नूरा वस्फी समी नूरा, और इसी तरह दुआए नूर को सोचिए। फजर की कह लीजिए सुन्नतों के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ जाते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। आप भी आज से इस सोच से मांगिए, और ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह मेरे जिस्म के अज़ा को मेरा वारिस रखना। किसी का ये जुमला था कि आज मुझे पहली दफ़ा समझ आया कि ये दुआ पहले पता भी नहीं थी, और जब पता लगी तो दिल खिल गया कि आंखें ज़िंदगी में काम करना ना छोड़ दें, बल्कि मैं चली जाऊँ मेरी आंखें ठीक हों। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज से ये दुआ मांगनी शुरू कर दी है। फिर ज़रा बिशार बिन बर्थ, अंधा कहा जाना ऐप नहीं, और आदमी तकवा और मर्दानगी रखे तो अंधेपन का क्या नुकसान, यानी हर एक की अपनी सोच होती है। कोई उसको अच्छी तरह से ले लेता है, कोई उसको बुरी तरह से लेता है। इसी तरह सालेह बिन अब्दुल कुद्दूस का कॉल हमने देखा, तो सारी चीज़ों में से आपके मेरे लिए मुतबर बात है तो ये है कि रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन। फिर आप देखिए कि जहाँ भी माजूरी का जिक्र होगा, यानी हैंडीकैप्स का होगा, तो कुछ नाम ज़रूर याद रहेंगे। मसलन आज के दौर के चंद मशहूर नाम ले लीजिए, मसलन देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, मशहूर साइंसदान था लेकिन माजूर था। स्टीवन हॉकिंग, मशहूर हिसाबदान था, पलके नहीं अपनी झपक सकता था, इसकी पलक भी कोई और झपकाता था। और इसने क्या कर दिया, आप पढ़िए तो, सर स्टीवन हॉकिंग का नाम लिखिए तो गूगल आपको बताएगा ये क्या शख्सियत थी। ये अलग बात है कि अल्लाह से दूर, और अल्लाह को बताया क्या खात्मा उसका कैसा हुआ, इसलिए हम तो उसकी अच्छी ही बात याद रखेंगे। इस तरह हेलन केलर, नाबीना गूंगी बहरी, एडिसन बल्ब का मोजिद और ग्राहम बेल टेलीफोन का मोजिद था। जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद ये दुनिया को कुछ ना कुछ दे कर गए, आप और मैं क्या हैं, इतना कुछ दिया अल्लाह ने। क्या खूबसूरत दिमाग दिया, क्या प्यारी आंखें दी, क्या जुबान कान, तो क्या सिर्फ इसको बस बेकारियात से गुजार देंगे? नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोग सिर्फ अपने कमज़ोर माजूर लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से मदद पहुंचाए जाते हो और इन्हीं की दुआओं से रिस्क दिए जाते हैं। बुखारी की रिवायत है 2896, लफ्ज़ जो हदीस में ना वो दुआ फा है, यानी तुम्हें रिस्क तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। इसकी एक से ज़्यादा तफसीलें मौजूद हैं। कभी घर के बुज़ुर्गों को इसमें आप ले आते हैं कि बूढ़े माँ बाप की दुआओं से रिस्क मिलता है, कभी मासूम बच्चों को समझ लीजिए, और कभी इसी तरह से कुछ और लोगों को जो घर में। तो ये जो रोड़े लगते हैं ना, पत्थर लगते हैं, ये बहुत बड़े माइलस्टोन बन जाते हैं आपकी तरक्की में। शर्त एक है कि आप इनकी कदर करें। तो अपने लिए अमल की बात लिखें, किसी जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार शख्स को देखकर आर नहीं करनी। क्या वो उसका अपना फैसला है? अगर कोई लुकनत से बोलता है, किसी के मुंह से राल टपकती है, किसी का एक पाँव छोटा और एक बड़ा है, एक टांग है एक नहीं, क्या ये उसका फैसला है? क्या आपका माशाल्लाह पूरा वजूद सही सालम, ये आपका फैसला है? यकीन करें, अपने आप को डंडा करें शीशे में खड़ा करके। अगर किसी के काले रंग की वजह से उस पर आ रहा है और किसी के अगली नस की वजह से आपका मूड ही ख़राब हो जाए। अगला टॉपिक लेते हैं, गर्दिशे अय्याम, तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह तो खुद कहते हैं सूरत निसा में कि ये ज़माने की गर्दिश हम फिरते हैं, एक पहिए की तरह घुमाया जा रहा है पहिया, कभी सामने धूप आ जाती है तो कभी छांव आ जाती है। रिवायत है कि अहमद बिन हम्बल ने बुकई बिन मखलत की बीमारी में ज़्यारत की, यानी ये बीमार हैं और अहमद बिन हम्बल जो है उनकी आदत को गए। अब ज़रा देखिए, आज हम किसी की आदत करने जाएं तो क्या होता है और अच्छे लोग क्या करते थे। अहमद बिन हम्बल ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, तुम्हें हर हाल में अल्लाह के सवाब से खुश होना चाहिए, सेहत का ज़माना या बीमारी का। मतलब यह कि या मैं सेहत में बीमारी का ख्याल भी नहीं गुजरता, इसलिए इंसान के अज़ायम बढ़ जाते हैं और इसकी उम्मीदें और आरज़ुएं बढ़ती हैं, और शदीद बीमारी के दिनों में सेहत का ख्याल नहीं आता, इसलिए उम्मीदें कमज़ोर हो जाती हैं और हिम्मत सुस्त और मायूसी तारी हो जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल की ये बात अल्लाह ताला के इस कलाम से है। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखा देते हैं फिर इसे इसे खींच ले, तो वो मायूस और नाशुकरा हो जाता है। और अगर इस सख्ती के बाद नरमी और नेमत का मज़ा पहुंचाते हैं तो कह उठता है कि मेरी मुश्किलात दूर हो गईं, फिर इतराता और मस्त हो जाता है, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, नेक आमाल किए, और इनके लिए मग़फ़रत और बहुत बड़ा अजर है। हाफिज़ इब्ने कसीर कहते हैं, अल्लाह ताला इंसान और इसके अंदर जो सिफाते जमीमा हैं, मतलब मजमूम हैं, बुरी सिफात हैं, इनके बारे में फरमाता है कि सिवाय इन मोमिन बंदों के जिन पर इसकी रहमत होती है, जब इंसान को नेमत के बाद शिद्दत पहुंचती है तो वो मुस्तकबिल के बारे में यास और कुनूत में मुबतला हो जाता है और अपने माजी और हाल का इनकार करने लगता है, गोया कि इसने कोई खैर देखा ही नहीं और कोई फराही पाई ही नहीं। ऐसे में इसे शिद्दत के बाद कोई नेमत मिले तो कहता है कि मेरी मुश्किलात दूर हो गईं, मतलब यह है कि इसके बाद मुझे कोई नुकसान जाफत लाहक ना होगी। अब वो इतराता है, फ़ख्र करता है और दूसरों पर फ़ख्र करता है, और अपने हाथ में जो होता है इस पर खुश होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवा इन लोगों के जिन्होंने सब्र किया, आमाले सालेह किए, इनके लिए मग़फ़रत और बड़ा अजर है। तो क्या सीखा आपने मैंने इस टिप से कि हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते, और एक बंदे के लिए भी नहीं हो सकते, और मुख्तलिफ बंदों के हालात भी एक जैसे नहीं होते। सवाल लिखिए, गर्दिश अय्याम के क्या असरात आते हैं हम पर? कुछ मुसबत होते हैं, कुछ मनफी, यानी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव। मसलन पॉजिटिव क्या है? इंसान के अज़ायम में इजाफ़ा होता है, उसकी सलाहियतें निखरती हैं, सब्र और बर्दाश्त में इजाफ़ा हो जाता है, اسی طرح قضاء و قدر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر مکمل توکل ہے، کیونکہ مشکلوں میں پردہ ہٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا، اس سوچ کے ساتھ کہ پھر انسان کر جو کچھ نہیں سکتا، تو پھر کبھی کبھی تو پازیٹیوٹی ہو تو اور بھی زیادہ جرت کرتا ہے، ول پاور اسٹرانگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتریاں کرتے ہیں. اس کے برعکس جب کبھی ایسے معاملات آئیں جس میں رویہ منفی ہو تو انسان کے عزم کمزور ہونے لگتے ہیں، سستی اور کاہلی ہوتی ہے، کم ہمتی آتی ہے، عدم برداشت کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور قضاء و قدر پر ایمان میں کمی آتی ہے اور اللہ پر توکل کی کمی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک طاقت اور انرجی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو اس کا اپوزٹ ہوتے ہیں. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کل مجھے کسی کی پکچرز دکھائی گئیں، ینگ لڑکا یا مرد کہہ لیجئے، اس نے خودکشی کر لی جو دوسروں کو سرو کرتا تھا. ظاہر ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا. اس کے اپنے اندر کتنا غم بھرا ہوا تھا کہ ایک دن اس کے اپنی ہی جان لینے کا ذریعہ بن گیا. یہ ہے اللہ کی وہ بات کہ وہ منارا دن ذکری فن لہو معیشت دن کا، آج اگر اس کے لاکھوں بھی چاہنے والے ہیں نا تو اس کو واپس نہیں لا سکتے. اور امام احمد بن حنبل کا قول کہ تمہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ثواب سے خوش ہونا چاہیے، ہاں وہ صحت ہو یا بیماری. کیا پتا چلا کہ صحت میں بھی اجر ملتا ہے اور بیماری میں؟ کیسے؟ صحت میں شکر کا اور بیماری میں صبر کا اجر. ہم سے کیا مطلوب ہے؟ پہلی بات یہ کہ حالات کی سختی سے نہیں گھبرانا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور اچھے اور برے حالات اللہ ہی کی مشیت سے ہیں، اس لیے اس پہ راضی رہیے. اور جو آیتیں ہم نے دیکھی وہ سورت رات کی آیت 9 سے آنورڈ تھی، وَلَئِنَ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. تو اگر آپ دیکھیں تو بات تو سچ ہے، رحمت آتی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے رب کو، چھن جاتی ہے تو نا امید اور نہ شکرہ ہوتا، اور کچھ لوگ اس سے اپوزٹ بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرماتا ہو، یہاں تک کہ کانٹا لگنے پر بھی. یہ بخاری کی روایت ہے 65:41. تو شاعر نے کیا کہا کہ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اب یہ ایک شاعر کا جملہ ہے، ہم تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ ہی خیر کا رہا. تو راضی رہیے، اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا. اکثر ہم رسمن بھی کسی کو کہتے ہیں اچھا راضی رہیے گا، اور خود اس سے راضی نہیں ہوتے. تو اگر آپ اللہ سے راضی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت جلدی راضی ہوتا ہے. پھر اگلا ٹاپک دیکھیے، زمین اور بھی اور آسماں اور بھی ہیں. کتنی زمینیں ہیں؟ سب اسماوات ان کے ساتھ سب الارض. تو اگر اس زمین پہ کچھ چیز صحیح نہیں لگی تو کوئی دوسری زمین دیکھ لیجیے. کسی کا قول ہے کہ سفر اندیشوں اور تفکرات کو ختم کر دیتا ہے. حافظ الرام ہرمزی اپنی کتاب المحدث الفاضل میں طالب علم کے لیے سفر اور اس کی لذتوں کے وصف اور سفر کی مذمت کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، مطلب یہ کہ اکثر لوگ سفر کو پسند نہیں کرتے نا، یہ اس کا جواب دیتے ہیں، سفر کرنے والوں پر اعتراض کرنے والا یہ جان لیتا کہ سفر کرنے والے کو سفر میں کتنی لذت ملتی ہے، وطن سے جدائی پر کیا نشاط حاصل ہوتا ہے، منازل پڑاؤ اور ظاہر و باطن میں مختلف ملکوں کے نشیب و فراز، باغات اور کھیتوں کے مناظر سے انسان کے اعضاء اور جوارح کو کتنا سکون اور لطف ملتا ہے، نئے چہرے دیکھنے، ملکوں کے عجائب کے مشاہدے، رنگوں اور زبانوں کے فرق اور اختلاف، کھنے اور سایہ دار درختوں کے سائے میں بیٹھنے، آرام کرنے، مساجد میں کھانے، وادیوں میں پینے، اور رات کی نیند میں نوکر چاکر کو چھوڑ کر ساتھیوں سے للہ اور فی اللہ دوستی کرنے میں کیا مزہ ہے. یعنی وہی سفر ہوں گے نا جس میں نکلے گئی اللہ کے نام پر بندہ. اور جب مسافر اپنے مقصد کو پا لیتا اور اس مجلس میں آ جاتا ہے جس کا سفر کیا تھا اور مشقتیں اٹھائی تھیں، تو اسے پتہ چلے کہ دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام تو انہی مشاہد، ان کے محاسن، ان مناظر سے شاد کام یعنی خوش ہونے اور ان کے فوائد کو لوٹنے میں ہے، اور ان لذتوں سے یہ اعتراض کرنے والے اور اس جیسے لوگ محروم ہیں. शैख ने कहा, जिस जगह तुम्हारी इहानत हो वहाँ से खैमे उठा लो, जिल्लत की जगह से बचो, जिल्लत बचने की ही चीज़ है। पता नहीं आपको ये जुमले समझ आए हैं कि नहीं। सफ़र के फ़वाद, और सफ़र भी वो जो अल्लाह के लिए हो। देखिए, एक तो उर्दू का सफ़र है ना, सीन फारा सफ़रा, इसी से कुरान में भी लफ्ज़ असफ़ार सूरह जुमा में आता है। लेकिन एक सफ़र इंग्लिश का होता है, सफ़रिंग के मानों में। हकीकत यह है कि सफ़र को हदीस में तो अजाब का एक टुकड़ा कहा गया, लेकिन उर्दू कल्चर में कहते हैं सफ़र वसीला है ज़फ़र। जी, सफ़र वसीला है ज़फ़र में से एक ये चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, और वो क्या कि सफ़र आपके स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर देता है। एक ज़मीन पे रह के देखा तो ज़मीन के दूसरे टुकड़े पे जाकर देखेंगे तो नए लोग, नया तरीका, नई चीज़ें। ऊपर आसमान एक ही होता है, लेकिन हम उस तरफ क्या भेज रहे हैं और वहाँ से हमारे ऊपर क्या उतर है, ये मुख्तलिफ होता है। तो जिनकी ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोच है ना, वो सफ़र को एंजॉय करते हैं। आप देखिए कि आज तक की तमाम इजादात जो भी आप देखते हैं, वो वैक्सीन से लेकर, बल्ब से लेकर, फ़ोन से लेकर, EVCD जो कुछ भी हैं, कुछ नया बनाया जाए, इस सोच का नतीजा। जो लोग नया नहीं सोचते ना, खुद भी बोर हो जाते हैं, लोग भी उनसे बोर हो जाते हैं। बिलीव मी, आप 2 साल पहले भी ऐसी ही ज़िंदगी में थी, 3 साल भी, 4 भी, आप ऐसे ही शौहर थे पिछले साल तक भी, और आज भी आप ऐसे ही हैं, और आप ऐसी ही बीवी हैं आज भी, और साल पहले भी, और 5 साल पहले भी। बोरिंग है आप, माजरत के साथ। याद रखिए कि रिश्ते फीके होने लगते हैं अगर उसके अंदर नयापन ना आए। अब ये नहीं कि बीवी बदल ले, नई बीवी आ जाए, ये एक और अपने लिए बवाल आ जाएगा। अगर पिछली भी हुई और दूसरी आ गई, और पहली चली गई दूसरी के आने के बीच में, बड़े हादसे होंगे आपके साथ। और यही चीज़ औरतों में, लोग नहीं बदलने, अपने आप को बदलिए। इंसानी तरक्की की बुनियाद क्या है, कुछ नया किया जाए। और अब देखिए कि इंसानी तारीख के बेहतरीन सफ़र में से एक सफ़र इल्म का सफ़र। मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़र से इल्म सीखने के लिए सफ़र हम कुरान में पढ़ते हैं। सहाबा कराम का अल्लाह के नबी की तालीमात दुनिया तक पहुंचाने के लिए सफ़र पढ़ने हैं तो आप सहाबा के हालात पढ़ लीजिए। मुहद्दिसीन का अहादीस की तालीम के लिए सफ़र पढ़ना है तो सिर्फ आप बुक पढ़ लीजिए, असफारुल मुहद्दिसीन। आपको इमाम बुखारी के सफ़र और इमाम मुस्लिम के मिल गए ना, आंखें उबल पड़ेंगी, अगर वाकई आप इसी रास्ते के राही हैं। और इसी तरह से तालिबे कुरान का कुरान की तालीम के लिए सफ़र, आज तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि ये लॉकडाउन बहुत बड़ी हुज्जत बन गया उन लोगों के लिए जो आज तक वाकई अपनी किसी मजबूरी की वजह से बाहर निकल कर तालीम ना ले सके। अब वो मजबूरी असल थी या मैन मेड थी, सोच की थी, और वाकई बहुत सारे लोग हैं जो आजमाइशों में, घर में एक हैंडीकैप बच्चा है, अब उसको छोड़कर माँ किधर जाए, बेड रिडन बुजुर्ग हैं घरों में, किधर जाए औरत। और इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं रुके हुए, अल्लाह सबके उज़र जानता भी है और उनके कबूल करे। घर से कुरान सीखने का अल्लाह ने मौका दे दिया ना, ये बहुत बड़ी हुज्जत है। आप भी जो नहीं सीख रहे, और संजीदगी से, मैं सीखना जानने को नहीं कहती कभी भी, वरना तो आप अपनी फेसबुक को सारे दिन इधर उधर घुमाते रहे तो 20-25 हदीसें आपको मिल जाएंगी, 10-15 आयतें मिल जाएंगी, कोई 2-4 नशीद आ जाएंगे, कोई 2-4 सियासी वीडियो आ जाएंगी, कोई कोरोना के बारे में आएगा, आप कहते हैं बड़ा इल्म है मेरे पास। नहीं, ये सीखना नहीं होता, लोगों से मिलकर सीखते हैं आप।